अगली सुबह आनिया थोड़ी देर से उठी। आज रविवार था और रविवार को वो 7 बजे उठते थी, बाकी दिनों में 5 या 5:30 बजे। उसने अपनी आंखें अपनी हथेलियों से मलते हुए हल्का सा खोला और निगाहें सीधे सामने लगे LCD पर गईं। उसी क्षण वो चीख उठी, अन्वय! अन्वय बाहर बालकनी में खड़ा व्यायाम कर रहा था। उसकी चीख सुनकर वो अंदर की ओर दौड़ा और उसके पास आकर घबरा कर बोला, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चीखी? कल के मैच में हम हार गए ना? आनिया रोती हुई शक्ल बनाकर उसे देखने लगी। उसका सवाल सुनकर अन्वय हैरानी से उसे देखते हुए बोला, तुम इसलिए चिल्लाई थी? मुझे पता था मैं मैच देखूंगी तो हम हार जाएंगे। मैं पनौती हूँ, जहाँ जाती हूँ बदकिस्मती फैला देती हूँ। सही कहता था अजय, मुझे मैच देखना ही नहीं चाहिए। पहले भी मैंने एक बार मैच देखने की कोशिश की थी और मेरे देखने के कारण हम हार गए थे, और कल भी हम हार गए। अब मैं कभी मैच नहीं देखूंगी। आनिया एकदम उदास हो गई। अन्वय उसकी बातों से और भी हैरान हो गया था और हैरान परेशान सा उसे देख रहा था। जब उसका ध्यान आनिया की बातों से हटकर उसके मायूस उदास चेहरे पर गया, तब जाकर उसने उसकी बातों पर गौर किया और उसकी उदासी की वजह समझते हुए उसके लबों पर मुस्कान फैल गई। उसने आनिया को देखते हुए खुद से कहा, पागल लड़की, कुछ भी सोच लेती है। अब उसने आनिया को देखकर आराम से कहा, आनिया तुम गलत समझ रही हो। नहीं, मैं ठीक कह रही हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ। तभी तो मेरे जन्म के साथ मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मिसेस सिन्हा ठीक कहती थी, मैं अभागिनी हूँ, जो काम करती हूँ खराब कर देती हूँ। जिसकी जिंदगी में जाती हूँ उसकी जिंदगी से खुशियाँ मुँह मोड़ लेती हैं। आपने देखा ना, मैंने कल मैच देखा और इंडिया हार गई, आनिया ने मुँह लटकाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अन्वय ने प्यार से उसके गाल को छुआ तो आनिया उदास निगाहों से उसे देखने लगी। तुम बदकिस्मत नहीं हो बल्कि बहुत भाग्यशाली हो। वैसे तो किसी जीत और हार का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, पर अगर तुम एक मैच के कारण खुद को बदकिस्मत मान रही हो तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम बदकिस्मत नहीं हो। कल का मैच हम हारते हारते भी जीत गए। आनिया ने जैसे ही ये सुना उसकी खोई मुस्कान लौट आई। उसने आंखों में चमक लिए उसे सवाल किया, सच में कल हम मैच जीत गए? अन्वय ने जैसे ही ये कहा आनिया उछल कर उसके गले लग गई। उसका चेहरा खुशी से एकदम गुलाब के ताजे फूल की तरह खिल उठा। उसकी उत्साह और खुशी देखकर अन्वय के लबों पर भी हल्की मुस्कान फैल गई। उसने पहली बार उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी मैच ये तय नहीं कर सकता कि तुम भाग्यशाली हो या बदकिस्मत। तुम्हारा दिल साफ है, तुम उदास अनजान इंसान के लबों पर भी मुस्कान ला देती हो, अनजान इंसान की मदद के लिए भी तैयार रहती हो। इससे ये साबित होता है कि तुम भाग्यशाली हो, अपने लिए भी और बाकी सबके लिए भी। इतनी प्योर लड़की और बदकिस्मत हो, ये हो ही नहीं सकता। आगे से ये बात कभी अपने दिमाग में मत लाना। आनिया ने सर उठाकर उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहा। अन्वय ने अब उसे खुद से अलग करते हुए कहा, चलो अब जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे कारण मैं व्यायाम अधूरा छोड़कर आया हूँ। इतना कहकर वो बालकनी की ओर बढ़ गया। आनिया ने अब ध्यान दिया कि अन्वय आज फिर शर्टलेस उसके सामने था और वो ऐसे ही उसके सीने से जा लगी थी, पर उस खास पल को महसूस नहीं कर सकी। ये सोचकर उसका मुंह छोटा सा हो गया। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया और वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। आनिया अक्सर अन्वय को शर्टलेस देखने के लालच में वहीं खड़ी होकर उसे व्यायाम करते देखती थी, ताकि अन्वय को पता भी न चले और उसका काम भी हो जाए। आंखों में चमक और लबों पर शरारती मुस्कान लिए उसने खिड़की थोड़ी सी खोली और बालकनी में व्यायाम कर रहे अन्वय को देखने लगी। अचानक ही उसकी नजर सामने के घर की बालकनी में खड़ी दो लड़कियों पर पड़ी, जिनकी प्यारी निगाहें अन्वय पर टिकी हुई थी और वे उसे बड़े प्यार से निहार रही थी। ये नज़ारा देखकर आनिया का खून खौल उठा, आंखें छोटी छोटी हो गईं और चेहरा गुस्से से जल उठा। वो दौड़ती हुई बालकनी के दरवाजे की ओर बढ़ गई और सीधे अन्वय के पास जाकर रुकी, जो अभी अभी पुशअप्स करके खड़ा ही हुआ था। पसीने की बूंदें उसके गठवीले बदन पर ठहरी हुई थी और सूरज की पड़ती सुनहरी धूप में मोतियों जैसे चमक रही थी, जैसे ओस की बूंद पत्तों पर चमकती है। अब वो और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था और बेहद आकर्षक भी लग रहा था। आनिया ने सामने खड़ी लड़कियों को घूर कर देखा, फिर उसने उसकी कलाई पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, कितने शर्म हो तुम, शर्टलेस होकर घूमने का अगर इतना ही शौक है तो कमरे में घूमो ना, बाहर जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें भी और लड़कों की तरह अपनी बॉडी दिखाकर लड़कियों को रिझाने का शौक पैदा हो गया लगता है, पर मैं तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अन्वय ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा और उसे अपना हाथ छुड़ाकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया और उसे घूरते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही थी तुम मेरे बारे में, और मुझे यूं खींचकर अंदर लाने का क्या मतलब हुआ? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया है, सब समझ रही हूँ मैं। जानबूझकर तुम रोज सुबह सुबह कपड़े उतारकर बालकनी में पहुंच जाते हो ताकि अपनी बॉडी दिखाकर आस पड़ोस की लड़कियों को पटा सको, आनिया ने तुनकते हुए जवाब दिया, जिसे सुनकर वो और गुस्से में आ गया और उसे डांटते हुए बोला, आनिया बोलने से पहले सोच तो लो कि क्या बकवास रही हो, मैं व्यायाम कर रहा था, इसमें ये सब बातें बीच में कहां से आ गई? बीच में कहां से आ गई? इतने मासूम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सब जानती हूं मैं, अभी बाहर क्या चल रहा था सब समझ गई हूं मैं, अपनी आंखों से देखा है मैंने सब, आनिया ने उस पर भड़कते हुए कहा, तो अन्वय ने भी उसे गुस्से से घूरते हुए सवाल किया, अच्छा तो जरा मुझे भी तो पता चले कि क्या देखा है तुमने जो सुबह सुबह अपनी बकवास बातों से मेरा दिमाग खराब कर रही हो। आनिया वैसे ही गुस्से में थी। उसका सवाल सुनकर वो एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बालकनी ले गई जहां वे लड़कियां अब भी खड़ी थी। आनिया ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या है ये, कब से चल रहा है ये सब, और तुम एक साथ दो दो लड़कियों को पटाने में लगे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? उसकी बातों से अन्वय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने गुस्से से सामने देखा तो दोनों लड़कियों ने मुस्कुराकर हाथ हिलाकर उसे हाय किया, जिससे अन्वय हैरान हो गया। वहीं आनिया ने तुनकते हुए कहा, देखा देखा अपनी करतूत कैसे स्माइल पास की जा रही और हाय भी कर रही है, अब समझ आया मुझे कि रोज अपनी शर्ट उतारकर तुम यहाँ क्या करते हो। आनिया बकवास मत करो, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो, अंदर चलो अभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर लाता हूँ। अन्वय उसकी कलाई पकड़कर उसे अंदर ले गया और जाते हुए एक बार गुस्से से आंखें तरेरते हुए उन लड़कियों को देखा। इसके साथ ही दोनों बेहोश होकर वहीं गिर गईं।